11 घंटे। कुछ दिन पहले ज्ञान सरोवर में एक कोर्स हुआ था जिसकी नोटिस जो हिस्ट्री हॉल के सामने लगती है रोज की, क्या क्या प्रोग्राम है, वहां पर एक विदेश की बहन ने एक क्लास कराया था जिसका नाम था राजयोगा मेडिटेशन एंड प्लेटोस एलिगोरी ऑफ केव। राजयोग मेडिटेशन और प्लेटो की रूपक कथा एक गुफा की। वो क्लास तो हमने नहीं सुना क्योंकि जब नोटिस देखी तब वो क्लास हो चुका था उसके पहले दिन, और वो कहीं दिख रहा है ना यहाँ पर। तो वो क्लास तो हो चुका था और वो कहीं पर शायद रिकॉर्डेड भी नहीं है। प्लेटो नाम का एक बहुत बड़ा दार्शनिक विदेश में हुआ है। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है, उसका एक नाम। सुकरात जो था, सोक्रेटिस, उसका वो शिष्य था, और अरस्तु जो था, एरिस्टोटल, उसका वो गुरु था। पाश्चात्य जगत में धर्म को सुव्यवस्थित रूप देने वाला प्लेटो था और बहुत बड़ा दार्शनिक। उसने जो कुछ सिद्धांत रखे उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिस पर उस विदेश की बहन ने शायद बोला, क्या बोला पता नहीं, परंतु आज की जो संडे की जो मुरली है हम इसी रूपक कथा से, इसी एलिगोरी से, इसी उदाहरण से चालू करते हैं। तो ये जो गुफा है, इस गुफा में यहाँ निखिलेश भाई ने हमारे चित्र बनाया है गुफा का, ये पूर्ण गुफा है। इस गुफा में कुछ कैदी है, ये वो कैदी है, अलग अलग जगह अलग अलग कहे गए हैं, किसी ने लिखा 3, किसी ने 5। तो कुछ कैदी है जो बचपन से बंद है, और ये जो कैदी है इस तरह से बंद है कि उनके हाथ और पांव दोनों ही बांधे हुए हैं और उनके सिर भी बांधे हुए हैं ताकि ये केवल आगे देख सकते हैं, ना तो एक दूसरे को देख सकते हैं, ना पीछे देख सकते हैं, ना कहीं मुड़ सकते हैं। और प्लेटो ये कथा बता रहा है, उसने एक संवाद लिखा है अपने शिष्य, अपने गुरु का और एक दूसरे शिष्य का, सोक्रेटिस, सुकरात, और एक दूसरा शिष्य पूछ रहा है। तो सोक्रेटिस ये बता रहा है, सुकरात ये बता रहा है उस दूसरे शिष्य को, ये प्लेटो ने लिखा अपने सिद्धांत में। तो एक बहुत अंधकार में गुफा जिसमें कुछ कैदी है जो जिनके हाथ और पांव बंधे हुए हैं, सिर भी बंधा हुआ है, वो कहीं पर भी देख नहीं पाते, मुड़ नहीं सकते, केवल आगे। और आगे एक दीवार है, स्टोन वॉल, आगे एक दीवार है, केवल वो आंख, वो जो दीवार है उसको देख पाते हैं बस। अभी ये जो कैदी है इनके पीछे आग जल रही है, कैदियों के पीछे आग है, बहुत पीछे आग है, और कैदी और आग इनके बीच में एक रास्ता जा रहा है, और उस रास्ते से लोग आना जाना कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन लोगों के पास अलग अलग, जैसे किसी के पास में घोड़ा है, दैनिक दिनचर्या के लोग आना जाना कर रहे हैं, किसी के पास बैलगाड़ी है, किसी के पास कुछ है, तो लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, और पीछे आग है, इधर कैदी है। अब आग की वजह से ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं और उनके जो सामान है उसकी परछाई इस दीवार पर गिर रही है, उसकी परछाई इस दीवार पर गिर रही है। कैदी, पीछे दीवार, पीछे रास्ता, रास्ते के पीछे आग, और कैदी के पीछे दीवार। अब उनकी जो परछाई है यहाँ आग की वजह से यहाँ गिर रही है दीवार पर, और ये जो लोग इन्होंने कभी गुफा के बाहर गए नहीं है, बचपन से गुफा में ही है, बचपन से एक दूसरे को भी देखे नहीं है, बंधे हुए हैं, केवल सामने की दीवार देखी है और दीवारों पर जो चित्र है, जो शैडो है, जो छाया है, जो परछाई है, उसी को ही सत्य मानते हैं। उनके लिए वही जगत सत्य है। और जो इनकी आवाजें हैं यहाँ के लोगों की जो रास्ते पे चल रहे हैं दीवार आंख के सामने, उनकी आवाजें प्रतिध्वनि होके एको होके यहाँ गिर रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है ये जो शैडो है उसमें जो ये आवाजें आ रही है ये उस परछाई से आ रही है। और ये लोग एक गेम खेल रहे हैं फिर, क्योंकि इनकी यही दुनिया है, इन्हें बाहर के जगत का कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो कैदी है, चारों पांचों जो भी है, वो एक नया गेम उन्होंने इन्वेंट किया, खोजा। वो सोचते हैं अभी उनको मजा आने लगा कि अभी कौन आएगा, अभी कौन सी छाया आएगी, और वो कह रहे हैं कि ये छाया बहुत अच्छी है, वो छाया अच्छी है, ये कहता है नहीं ये अच्छी है, वो कहता है नहीं वो अच्छी है, ये सत्य है वो सत्य है, ये उससे ज्यादा सुंदर है। परंतु वो है क्या सब? लोग जो चल रहे हैं यहाँ चल रहे हैं, पीछे आग, आग की वजह से लोगों की भी छाया नहीं, उनके साथ जो खिलौने हैं, जो उनके वस्त्र, बैल है, गाड़ी है, जो भी है, उनकी छाया एक जगह लिखा है, कोई कोई जगह लिखा है लोगों की छाया पड़ रही है कई कई, क्योंकि इस ये जो सिद्धांत है प्लेटोस एलिगोरी ऑफ केव, प्लेटो अफलातून की गुफा, इस पर पूरा धर्म खड़े है, बहुत सारे पूरा सिद्धांत जो है, ये जो त्रयी है, ट्रायो, सुकरात उसका शिष्य, प्लेटो उसका शिष्य, अरस्तु, ये तीन दार्शनिक है, इस पर सारे धर्म विदेश के पाश्चात्य जगत में जितने भी धर्म आए इनके थ्रू देखा जाता है उनको। तो आग, रास्ता, कैदी, वस्तुओं की परछाई, और ये लोग गेम खेल रहे हैं। गेम ऐसा खेल रहे हैं कि उनको मजा आ रहा है, उनको लग रहा है ये 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 जो छाड़ो है ना बहुत अच्छी है। फिर वो कहता है नहीं नहीं रुको रुको रुको, अभी जो दूसरी आएगी ना वो उससे अच्छी है। तो वो परछाई में उलझे हुए हैं, एक एक परछाई में उनको अच्छा लग रहा है। तो ऐसी ये वस्तु स्थिति है। प्लेटो ने कहा कि सुकरात कह रहा है, उसका शिष्य, उसका गुरु जो ये कथा कह रहा है, वो भी काल्पनिक गुफा, कि मनुष्य की जो अवस्था है आज ऐसी है, एकदम गुफा में है, हाथ पैर बंधे हुए है और केवल सामने देख सकते हैं और कहीं नहीं, एक दूसरे को भी देख नहीं सकते। और किस में रस है? उस छाया में, जो कि वास्तविक नहीं है। इन्होंने किसी ने भी प्रकाश देखा नहीं है, प्रकाश क्या है इन्हें पता नहीं, क्योंकि बचपन से कैदी है, बचपन से बंधे हुए हैं और देखते हैं केवल एक ही दृष्टिकोण है, केवल एक ही नजरिया है देखने का। तो सुकरात कहता है, प्लेटो कहता है कि मनुष्य इस कैदी जैसा है, एक अंधकार में गुफा, सत्य का इसे पता नहीं। इन्हें यह भी नहीं पता कि जो सामने परछाई पड़ रही है परछाई है, उन्हें तो लग रहा है ये परछाई नहीं है यही सत्य है, और उनको यह भी लग रहा है इन्हीं से आवाजें आ रही है, वास्तव में वो आवाजें भी सही नहीं है क्योंकि एको हो रहा है और फिर वहां पर प्रतिध्वनित हो रही है आवाजें। तो उनको लग रहा है बस यही जीवन है, यही सत्य है। अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ कि एक कैदी को छुड़ा दिया गया। अलग अलग सिद्धांत है इसमें बहुत सारे। अभी एक कैदी को छुड़ाया गया और वो भागकर यहां तक पहुंचा, रास्ते तक। उसने देखा अरे आग, पर वो देख नहीं पाया आग को, उसकी आंखें चौंधी आ गई उस आग को देखकर, क्योंकि आज तक कभी आग देखी नहीं, वो तो सोच रहा था यही सत्य है। उसको वहां जाके पता चला अरे ये तो परछाई है, परंतु उस आग में वो सहन नहीं कर पाया और डर गया आग से, नहीं, और वापस आके बंद गया। ये पहला कहती, नहीं सहन कर पाया, आग छोटा सत्य है। उसके बाद उसी कैदी को फिर से छुड़ाया गया, जबरदस्ती गुफा के बाहर लाया गया दिखाने के लिए कुछ और सत्य क्या है, और वहां आके तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता वो, केवल उसे परछाई देखने की आदत है, पहले केवल परछाई देखता है, सूरज की परछाई, लोगों की परछाई, जानवर देखता है, फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है इस लोक का, इस जगत का, इस संसार का, और एकदम खुशी आ जाती है। समझता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे सत्य का पता चल गया, और अब तक मैं जिस दुनिया में रहता था वो दुनिया तो झूठी दुनिया थी। सत्य तो ये है, सत्य तो ये सूरज है। सुकरात कहता है ये जो व्यक्ति छुड़ाया गया है ये फिलोसोफर है, ये दार्शनिक है। संसारिक व्यक्ति जो है वो बंधे रहते हैं अंधकार में, दार्शनिक जो है वो बाहर आ जाता है, उसे सत्य का पता चल जाता है। उसे लगता है ये सूरज है, ये सारी ये है, ये तो पीछे आग थी और ये तो दीवार थी, यहाँ से तो लोग आना जाना कर रहे थे बीच से, उनकी परछाई वहां पड़ रही थी और हम तो उसी को सत्य समझ रहे थे, उसी के लिए खेल रहे थे, उसी को जीवन समझ रहे थे, उसी ध्वनि, वो यहाँ पर ध्वनियों को सुनता है, पंछियों की आवाज पहली बार, मनुष्यों की आवाज है। अब तक तो केवल प्रतिध्वनि सुन रहा था, अभी वास्तविक साउंड स्वर सुनता है, एकदम से आलोक, एकदम से खुशी। फिर सोचता है मेरे वो साथी बेचारे अंधकार में है, बेचारे वहां फंसे हुए केव में, उस गुफा में, उनका क्या होगा, मुझे उन्हें सत्य बताना है। ये अब दूसरा सिद्धांत। भागता है जाकर, यहाँ रहता है, यहाँ सब देखता है और भागता है, और भागते ही एकदम प्रकाश से अंधकार में आ जाता है, एकदम आंखें उसकी ब्लाइंड हो जाती है, वो अंधा हो जाता है, क्योंकि एकदम प्रकाश से बहुत जल्दी हुई उसे। कब मैं उनको बताऊं कि चलो मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ, तुम भी चलो, ये तो गुफा है, जो सामने दिख रहा है वो सत्य नहीं है। वो आता है भाग के और अंधेरा हो जाता है, अंधकार। तो बाकी साथी कहते हैं बिल्कुल हमें छुड़ाने की कोशिश नहीं करना, अगर तुमने हमें छुड़ाया तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम यहाँ से भागे ना इसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है, तुम अंधे क्यों हुए, क्योंकि तुम यहाँ से भागे, तुमको यही रहना चाहिए था, क्यों भागे तुम यहाँ से। ये दूसरा सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत में कहा गया वो व्यक्ति जो बाहर गया था और जिसने सूरज को देखा, चंद्रमा को देखा, इस दिन और रात को देखा, हवाओं को देखा, ध्वनियों को सुना, पंछियों को सुना, मनुष्यों को देखा, वस्तुओं को देखा, जानवरों को देखा, नदी को देखा, तालाब को देखा, सब कुछ देखा, उसके अंदर इच्छा हुई कि मैं जाऊं और अपने मित्रों को बताऊं कि तुम अंधकार में हो, तुम कहती हो ये जो ध्वनि है ये सत्य नहीं है, ये जो परछाई है ये शैडो मात्र है, ये सत्य नहीं है। वो आकर भाग कर इस दीवार पर यहाँ पर आता है रास्ते में, और यहाँ पर रास्ते में आके चिल्लाता है जोर जोर से, देखता है वो जा नहीं पाता है, पर आगे वहां से चिल्लाता है अरे मेरे मित्रों जागो, वो अंधकार है, पर तू ये जो मित्र है उनको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, उनके लिए वो वैसा ही एक शैडो है जो सामने से जा रही है, वो चिल्लाता रहता है पर उनके लिए वो नहीं सुन पाते, क्योंकि तो वो तो पहले से वही है, वो कैसे जानेंगे, उनके लिए उसकी वो वहां से चिल्लाता चिल्लाता जो पीछे वो उसकी परछाई वहां दिख रही है, उनके लिए वो वैसा ही है जैसे वो पहले था। इसे कहा जाता है प्लेटोस एलिगोरी, एलिगोरी अर्थात रूपक, रूपक कथा, नीति कथा ऑफ केव। ये संपूर्ण मनुष्य की अवस्था है, जीवन में व्यक्ति इस तरह है जो बंधा है, एक ही दृष्टिकोण, सब तरफ से बंधा हुआ, जो उसके आसपास चल रहा है सब क्या है, भास है, मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है, परंतु वो उसी को सत्य मानता है, उन्हीं ध्वनियों को, उन्हीं संबंधों को, उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं विकारों को, और जो छूटता है, थोड़ा सा छूटता है, वो देख नहीं पाता प्रकाश को, वापस जाके बन जाता है। तीसरा जो छूटता है वो देखता है, सत्य को पाता है, परंतु पूरा नहीं समझा है सत्य को, हड़बड़ी है, जाकर तुरंत अंदर जाता है और उनके साथ में उसकी आंखें चली जाती है। तीसरा जो है वो चिल्लाता रहता है पर वो उसे समझ नहीं पाते, कुछ इधर है कुछ सब जगत में बाहर है, वो जो है छूट गया वो है ज्ञानी। इस मुरली में बाबा ने एक नया दृष्टिकोण दिया है, अब वो जो है परमात्मा वो सबसे छूटा हुआ है, वो सब जानता है कहाँ क्या है। मुरली की शुरुआत ही है बाबा क्या कर रहे हैं आज, भ्रमण सैर कर रहे हैं, विश्व की परिक्रमा कर रहे हैं। जितना समय चाहे उतने समय वो डिसाइड कर सकता है कितने समय में मुझे ये सैर ये परिक्रमा पूरी करनी है, चाहे संक्षिप्त में बताए सार में या विस्तार में। जो भारत में है, जो पूर्व में है और जो पश्चिम में है, अगर देखा जाए तो दोनों ही किसी न किसी रीति से अंधकार में है। पूरा संसार ये गुफा है और भगवान ने जो सैर की, यात्रा की, भ्रमण किया, पर्यटन किया, जर्नी की, उसमें उस जर्नी में वो वस्तु स्थिति बता रहा है, संसार का क्या हाल है, भारत वालों का क्या हाल है और विदेश वालों का क्या हाल है, भारत क्या कर रहा है और विदेश क्या कर रहा है। भारत वाले भी जैसे इन कैदियों की तरह सत्य बताने, विदेश वाले भी जैसे इन्हीं कैदियों की तरह उन्हें भी सत्य बताने। और हम यदि अपने आप को देखें तो हम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कैदी हैं। बाबा ने आबू निवासियों को याद किया, भारत वालों को याद किया और विदेश वालों को याद किया। भारत के अज्ञानी, आबू के अज्ञानी, विदेश के भी अज्ञानी। स्थिति सबकी ऐसी ही है जैसे इस रूपक में, इस कहानी में सुनाया। हम भी ऐसे बंधे हुए हैं। किस में बंधे हुए हैं? विकार, कोई धारणाएं, कोई आदतें, कोई संस्कार, कोई बंधन, कोई आसक्ति, कुछ ना कुछ है जो बांधे हुए और जो सत्य को हमें देखने नहीं देती। सत्य है, वो सूरज सत्य है, उस तक पहुंचने नहीं देती। यहां तक कि पीछे भी मुड़कर हम देख नहीं सकते, बस उसी में ही आनंदित हो रहे, उसी में ही सुख है जो सामने दिख रहा है, जो कि वास्तव में परछाई है, जैसे इन कैदियों को स्टोन वॉल पर दिख रहा है परछाई। तो बाबा ने जो विहंगम दृष्टि डाली है इस सृष्टि पर, इस सृष्टि के गोले पर, कुछ बातें उसने देखी। ये जो पर्यटन उसने किया, चार उसके कंक्लूजन कहो या उसका जो निष्कर्ष है, ऐसी चार बातें उसने बताई। पहला निष्कर्ष तो उसने ये बताया कि विदेश वाले जो है अल्पकाल की प्राप्तियों में मस्त है और उनकी ही कॉपी फिर भारत वालों ने की है, और भारत वाले अभी खुद अनुभव भी कर रहे हैं, स्वयं प्रति कार्य भी में भी लगा रहे हैं। किसको? अल्पकाल के सुख साधन। किससे किनारा कर रहे? रूहानियत से किनारा कर ले, और जो नकली चीज है, जो झूठी चीज है, अपनी असली चीज को छोड़कर, अपनी असली शक्ति को छोड़कर, विशेष वस्तु को छोड़कर, जो नकली है, जो झूठ है, जो अवास्तविक है, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। परंतु विदेश वाले अब क्या कर रहे हैं? उससे उब गए हैं। वो अल्पकाल के साधन, अल्पकाल की सामग्री, और कहां आ रहे हैं? आकर्षित कहां हो रहे? भारत की ओर, भारत की भूमि की ओर, भारत की संस्कृति की ओर। बाकी भारतीय क्या कर रहे? उधर उधर की संस्कृति, उधर के कपड़े, उधर के भोजन सब एडॉप्ट कर रहे हैं। इधर उधर की टेक्नोलॉजी, उधर का अच्छा लगता है, वहां के ढोल बहुत सुहावने हैं, वहां की जो हरियाली है वो इधर से ज्यादा अच्छी लगती है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। जो है नहीं वह चाहिए, उधर जो जो दिखता है वो सब इधर अपनाना चाहते हैं। जबकि भारत ही धर्म का केंद्र है, भारत ही अध्यात्म का गुरु है। अपनी असली वस्तु को भूलकर, अपनी असली संपदा को भूलकर उधर आकर्षित हो रहे, और किस तरफ आकर्षित हो रहे? जो वो लोग छोड़ रहे, जो कि ये है फर्स्ट नंबर की आत्माएं, पहले धर्म की आत्माएं, ऊंचे कुल की आत्माएं, और वो जो आत्माएं पिछाड़ी में आई हुई है, वो अभी उन वस्तुओं को छोड़ रही है क्योंकि उन्होंने देखा उसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है। जो वो छोड़ रहे वो हम झूठा, झूठन के झूठन का झूठा, वो हम एडॉप्ट कर रहे हैं, कपड़े उनके जैसे, भोजन उनके जैसा, फैशन वही कपड़े का हो फैशन का हो उनके जैसा, फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी सब कुछ उनके जैसा। भारत की संस्कृति में जो खाना नहीं है वो सारा आ गया इधर, रामायण में कहीं नहीं है श्री राम को बर्गर पिज्जा और ये सब खाते हुए। ना ही महाभारत में इन सब चीजों का कहीं वर्णन है। तो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की महानता, भारत की आध्यात्मिकता, और बाबा ने ये भी कहा है कि वहां के लोग यहाँ के जो गुरु है उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं। कितने सारे भारतीय विदेश में गए और कितने उनके सारे फॉलोअर्स बन गए, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या कहा बाबा ने, ढूंढते हैं, पाना चाहते हैं, परखने की आंख उनकी तीव्र है, पा रहे हैं, परंतु भारतीयों की आंख क्या हो गई, अंधे हो गए। पहले से आए हुए। तो वस्तु स्थिति ऐसी है, ये इधर वो उधर आकर्षित हो रहे, ये उधर आकर्षित हो रहे। बाबा ने कहा बाप को तरस पड़ता है जब देखते हैं कि परखने की आंख बंद है। मुरली याद आ रही है 18 जनवरी की संदेश, इंग्लिश में तो सातवां लिखा है पर है वास्तव में छठवां संदेश वो, पर इंग्लिश मुरलिया जो टाइप हुई है उसमें सातवें नंबर पर है वो, पर है ओरिजिनल में छठवें नंबर का संदेश, जिसमें बाबा इमर्ज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा गेट है जिसमें टिकट बट रही है, कुछ आत्माओं को टिकट मिली कुछ को नहीं मिली, और जिनको नहीं मिली वो पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और उस द्वार पर लिखा है स्वर्ग का द्वार। ऐसा समय आने वाला है, ये दृश्य बाबा ने दिखाया, पहला दृश्य। दूसरा दृश्य दिखाया एक नदी बह रही है, और नदी बह रही है वहां पर कोई दूर दूर से लोग आ रहे हैं पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए, पानी भरने के लिए, और वहां जो लोग बैठे हैं उनको उसकी कीमत नहीं है, उसका महत्व जानते नहीं है, स्नान का महत्व जानते नहीं है। दूर दूर से लोग आ रहे, और थोड़ी कुछ देर में किसी ने स्नान किया, किसी ने जमा किया, कुछ देर में नदी ने अपना रास्ता पलटा, और जिन्होंने स्नान किया था, जिन्होंने पानी भरा था वो तो खुश थे, पर जिन्होंने नहीं भरा था एक बूंद के लिए भीख 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 मांग रहे थे। बच्चे ये है ज्ञान गंगा, और जो यहाँ वाले हैं वो है आबू निवासी। इसके लिए मंत्र दिया है, बाप को याद करो योगी और पवित्र बनो, संदेश यहाँ पूरा होता है। 18 जनवरी का छठवें नंबर का संदेश, आबू निवासी यहाँ है परंतु किस में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं। पांडव भवन के पीछे ही मंदिर है, सारे विश्व की आत्मा यहाँ आ रही है और वो लोग उस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसी स्थिति का वर्णन बाबा ने इस मुरली में किया है। किसी को पता नहीं कौन क्या कर रहा है, सब अंधकार में है। भारत घर है, इस घर में श्रेष्ठ मेहमान आया है बाप। भारत घर में श्रेष्ठ मेहमान बाप आया, उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, परखने की आंख नहीं उसका बने नहीं, परंतु वो लोग वहां पर उसकी आवाज सुनी, धर्म की दीवार को तोड़कर यहाँ आए, क्रॉस करके यहाँ आए। किस सभ्यता में, किस संस्कृति में उन विदेशियों ने जन्म लिया? बाबा इस मुरली में विदेशियों से बात कर रहे हैं। भारतीय तो यही रहने वाले, बचपन से रामायण और महाभारत सुनने वाले, बचपन से मंदिरों में जाने वाले, उनके यहाँ तो ना तो लक्ष्मी है ना नारायण, और कैसे उन्होंने इस ज्ञान को एडॉप्ट कर लिया, कितना बड़ा आश्चर्य है ये। जन्म रोमन कैथोलिक, उस दिन भाई बता रहे थे ना, विदेश के भाई, रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म लिया, क्रिश्चियनिटी का बैकग्राउंड है, उस धर्म में, उस कल्चर में, उस संस्कृति में, उस सभ्यता में जन्म लेकर भगवान को जान लेना कितनी बड़ी बात है। कैसा कल्चर है उधर, विकारी कल्चर, मटेरियल मटेरियल जिस्मानी देह से ममत्व हटा दो, आज की मुरली में एक जगह महावाक्य है, मटेरियल जिस्मानी देह से ममत्व हटा दो। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है बाबा का। दूसरा, सारा ही मनुष्य सृष्टि एक झाड़ है, सूख गया है, हरा भरा नहीं रहा, पत्ते फूल फल सब सूख गए। जब झाड़ ही सूख जाता है तो फल फूल भी सूख जाते हैं। उसी तरह संपन्नता की कमी है सारे ही संसार में। वो तो एक विशेषता की लहर सुनाई, वो तो इधर आ गई, परंतु सारा ही संसार जो है जर्जरीभूत, जर्जर हो चुका है, सूख गया है, कहीं पर भी संपन्नता नहीं है। बाबा ने कहा उधर अभी नौकरी भी नहीं मिलती, किसने तो बताया होगा बाबा को उधर आजकल नौकरी नहीं मिलती, पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, आजकल उधर नौकरी भी नहीं मिलती तो ऐसा वहां पर बाबा ने उदाहरण दिया क्रिश्चियन धर्म का। मेन ट्रंक तो ये है, मेन शाखा ये है, जब यही धर्म सूख गया तो वो जो क्रिश्चियन धर्म है वहां तक हरियाली थी वो भी सब सूख रहा है। सारे धर्म जो है शक्ति नहीं रही, असली शक्ति नहीं रही किसी भी धर्म में नहीं। वो जो फॉलो करने वाले हैं केवल नारे लगाते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, बस जीवन में वो धारणाएं नहीं, विकारों से भरे हुए चित्त है। यहां तक कि यथाकथित जो भी मिशनरीज पादरी इन सब का जीवन, आंतरिक जीवन देखो डिस्टर्बेंस से भरा है, विकार है, सप्रेशन है, रिप्रेशन है, दमन है। अध्यात्म को वैसा नहीं समझा जैसा समझना चाहिए था, और कुछ तो नाम मान शान में फंसे हुए हैं। ये वस्तु स्थिति है संसार की, दरिद्रता है आध्यात्मिक, संपूर्ण दरिद्रता। किसी के पास ना ज्ञान है ना कुछ है, ना तो शक्ति है ना तो गुण है। एक बहुत ही अच्छी कथा नहीं है कहानी, परंतु यहाँ बताई जा सकती है। क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन होता है, जिसने भी पाप किए हैं चर्च में जाओ फादर के सामने पूरा कन्फेस कर लो, पूरा मान लो, पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित कर लो, प्रतिक्रमण। उस दिन बता रहे थे ना जैन धर्म में प्रतिक्रमण है, पश्चाताप करते हैं जिसमें इंट्रोस्पेक्शन अंतर्मुखी होके चेकिंग, कभी एक बार कभी दो बार कभी तीन दिन में कभी चौमासी चार महीने में कभी साल में एक बार, ऐसे पांच प्रकार की प्रतिक्रमण है, अंतर्मुखी होकर चेकिंग करना। तो जोक के तौर पे इसे दिखाते हैं और इतना कोई शिष्ट ये बात नहीं है, परंतु फिर भी एक स्त्री चर्च में जाती है, क्योंकि वहां डायरेक्ट भगवान के सामने नहीं कहना होता है, पादरी के सामने, प्रीस्ट जो होता है ना, नहीं तो सजा मिलेगी, नियम के विरुद्ध है, डायरेक्ट एजेंट के थ्रू जाना होता है तो वो जाके बीच में एक पर्दा लगा हुआ होता है, पादरी इधर से बैठता है, वो उधर से बैठती है। वो कहता है बच्ची कहो तुमने क्या पाप किया है, वो कहते है मैंने पाप तो किया है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो मेरा एक प्रेमी है वो आया था, तो मैं बैठी थी घर में, तो वो आया, वो मेरे बाजू में बैठा, तो वो कहता है फिर क्या हुआ, वो कहता है वो थोड़ा सा और सा नजदीक आ गया मेरे, वो कहता है अच्छा फिर क्या हुआ, तो वो कहता है, वो कहती है कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये इसलिए आई है वो कन्फेशन करने के लिए कि मेरे से पाप हुआ है, वो कुछ उपाय बताएगा। तो वो एकदम एक्साइट हो जाता है, फिर क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं मेरी माँ उतने में आ गई, वो कहता है धत तेरी की ये स्थिति है, हंसने की तो बात नहीं है, परंतु ये वस्तु स्थिति है। किन की, स्पिरिचुअलिस्ट जो अध्यात्म सिखाने वाले है, दूसरों को जगाने वाले है, दूसरों में आध्यात्मिक चेतना भरने वाले है, उनकी ये स्थिति है कि उनके मन में भी वही काम दमन हुआ है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन बाबा का है, सारा ही संसार जर्जर, सारे ही धर्म सारी ही शाखाएं, जबकि मेन तना ही जर्जर हो गया है, ये दूसरा। तीसरा ऑब्जर्वेशन है क्या, चिल्लाना। संसार की आत्माएं क्या कर रही है, क्योंकि उसने परिवर्तन किया ना पूरे विश्व का, भ्रमण किया शहर की बच्चों के साथ, तो देखा कि आत्माएं चिल्ला रही है, दर्द है, दुख है, पीड़ा है। कैसे चिल्ला रही है, मुख से भी और मन से भी, मुख से ज्यादा मन का जो चिल्लाना है, कह नहीं सकते किसी को, इतना दर्द है अंदर, किसको बताए, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन कहा ना, अभी 1-7 अप्रैल आ रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे, इस बार का थीम है डिप्रेशन लेट्स टॉक, क्योंकि लोगों के अंदर डिप्रेशन है परंतु बोलते नहीं है। तो लक्ष्य ही है कि जिनके पास है उनको भी बताओ और इलाज लो और ठीक हो जाओ। 35 करोड़ लोग आज विश्व भर अवसादग्रस्त है, डिप्रेशन से ग्रसित है, ये तो आंकड़े हैं, इससे कई गुना ज्यादा होंगे। जितनी बीमारियां हैं उसमें भारत की एग्जैक्ट पता नहीं परंतु ये विश्व भर के है, जितनी बीमारियां कहीं ना कहीं डिप्रेशन है अंदर। यहां तक कि ब्राह्मणों में भी वस्तुतः मात्रा कम है परंतु है सूक्ष्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से। यहां तक कि श्रेष्ठ पुरुषार्थियों में भी पुरुषार्थ वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, उसका भी थोड़ा सा रहता है। ज्ञान को वैसे नहीं समझ पा रहे, कैसे टाइम मैनेज करे, लिमिटेशंस। उस दिन भी कुछ पॉइंट्स देखे थे ना, टाइम नहीं है, सेवा साथी कुछ लिमिटेशंस है, वीकनेस है अपनी, नहीं हो पा रहा है। जो बहुत कुछ करना चाहते, पता भी है ये करना है ये करना है ये करना है परंतु हो नहीं रहा है, कारण कुछ भी हो तो वो भी अवसाद को। तो संसार की हालत कैसी है, चिल्लाना और लास्ट ऑब्जर्वेशन चलाना। सुख शांति से नहीं चल रहे, मजबूरी से जबरदस्ती से मर मर के जी रहे हैं, दुखी है अशांत है, जो भी जॉब कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं जबरदस्ती है, देश को और जीवन को दोनों को चला रहे। क्या कहा बाबा ने, देश को भी और जीवन को भी चला रहे। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद बाबा ने क्या कहा, उसकी प्रैक्टिकल साइंस। ये बात एक समझ में नहीं आई जो कहा कि 100 वर्ष जो हुआ तो पहले हुआ तो वो हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा कहा ना उसने, 1882 में कुछ हुआ था क्या 100 वर्ष पहले, ये 1982 की मुरली है। बाबा कह रहे 100 वर्ष पहले अभी कहते जो हुआ तो वो हो रहा है। 82 वो पीरियड है जिस समय टीवी वीडियो वीसीआर ये वो पीरियड है इतिहास का, टीवी चैनल्स डीडी दूरदर्शन 1 ये सारा उस समय थोड़ा थोड़ा आसपास इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, 82 की बातें हैं ये सारी। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल साइंस दिख रही है अभी क्या होगा, चारों ओर हलचल है, चारों ओर प्रश्न है। जैसे उदाहरण दिया मंथन का, मथनी का, चर्निंग का, उससे हलचल होती है फिर मक्खन निकलता है। तो यहाँ प्रश्न है, बाद में फुल स्टॉप होगा, प्रश्न सारे समाप्त हो जाएंगे, फुल स्टॉप हो गया, बाप आ गया, आगे क्या होगा, ये सारे प्रश्न है। तो प्रत्यक्षता का मक्खन कौन खाएगा, ये बाबा ने उसने पूछा, खाने के लिए तैयार हो। और लास्ट एक बात कही कि हमें अब क्या करना है, हमें क्या करना है, पंख देने हैं आत्माओं को, क्या करना है, प्राप्तियों के पंख देने हैं। और वो कौन दे सकेगा, जो स्वयं मूर्ति कला में है, जो चढ़ती कला में है वो नहीं। उड़ना अर्थात क्या, चढ़ना अर्थात का एक जगह रुक्ति कला का भी वर्णन किया है आगे। चढ़ती कला अर्थात देह के, उड़ती कला अर्थात देहभान से परे, जितना देहभान से परे रहेंगे उतना ही आत्माओं को प्राप्तियों के पंख और उनको उड़ा सकेंगे। अभी नहीं उड़ा पा रहे उनको, वो तो चल भी नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, चला रहे अपने आप को, कैसे ना कैसे, कैसे तो भी चला रहे, जबरदस्ती चला रहे। एक व्यक्ति के पास बिल्कुल भी धन नहीं होता है, पादरी के पास पहुंचता है, क्या करूं, धन दो, धन चाहिए, कुछ युक्ति बताओ। वो कहता है एक काम करो, दिन भर में रोटियां बेचो और रात में क्या करो, वो जो कफन का कपड़ा होता है ना वो बेचो, क्योंकि जब तक दुनिया है तब तक ये 2 चीजें जरूरी है, क्योंकि लोग तो जिएंगे तो उनको रोटी चाहिए और लोग मरेंगे तो उनको कफन चाहिए। तो कफन का कपड़ा रात में बेचो, दिन में रोटियां बेचो। 1 महीने के बाद वो व्यक्ति वापस आता है, कहता है क्या हुआ, बोलते कुछ भी नहीं हुआ, वैसे के वैसा ही हूँ। क्यों, जॉब चालू नहीं किया, वो कहता किया तो लोगों ने खरीदा नहीं, खरीदा। और जब तक ये जो 2 जॉब ऐसे है कि जब तक मनुष्य सृष्टि है तब तक चलेंगे। वो कहते हैं पर यहाँ ना तो कोई जी रहा है ना तो कोई मर रहा है, सब ड्रैगिंग ऑन, सब घसीट घसीट के केवल जबरदस्ती हो रहा है सब, कोई जिंदा नहीं और कोई ना मर रहा है। चलो कहानी ने थोड़ा दूसरा रूप लिया, पर वो कहने का भाव है कि संसार में सब मर मर के जी रहे, ढगेल रहे अपने आप को। सत्य नहीं है किसी के पास भी। तो ये अवस्था, तो हमें क्या करना है आज की साकार मुरली में भी है, तुम है सालवेशन आर्मी, तुम सालवेशन आर्मी हो, विश्व का बेड़ा गर्त है तुमको निकालना है। तो ये मुरली यहाँ पूरी हुई और फिर और एक 10-15 मिनट बाबा ने पार्टियों से मुलाकात, विदेश के ग्रुप से मुलाकात, यहाँ एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, चार सूत्र कहो, चार बातें कहो, किसके लिए वो चार बातें हैं, किसके लिए नहीं वो तो है, किस लिए है वो सारे, नवीनता लाने के लिए, नवीनता लाने के लिए चार बातें हैं। क्यों नवीनता चाहिए, किस में नवीनता चाहिए, एक है योग करना, वही योग किए जा रहे हैं, एक है मुरली सुनना और सुनाना, उसी रीति से मुरली सुनाया जा रहा है और उसी रीति से मुरली सुन भी रहे हैं। सब में नवीनता चाहिए, नवीनता नहीं तो सुस्ती, नवीनता नहीं तो अलबेलापन, नवीनता नहीं तो मैं सब कुछ जानता हूं मुझे सब पता है, हर रीति में। एक है मुरली सुनने में नवीनता, सुनते समय भी नए रीति से सुनना, ड्राइंग बनाते बनाते सुनना, इतनी सारी विधि है अलग अलग मुरली सुनने की, वही रीति से नहीं, अलग अलग मुरली सुनाना, उसमें भी नवीनता चाहिए, नहीं तो वो सुनने वाले बोर। सुनाने की एक विधि, जैसे ये ड्राइंग के माध्यम से कहानी है, ये सब क्या विधि है ताकि वो ज्ञान इंटरेस्टिंग हो, जहाँ सुस्ती है, जहाँ नवीनता है वहां सुस्ती भाग जाती है, बाबा ने कहा। हाँ। तो नवीनता लानी है मुरली सुनने में और सुनाने में, सुनाने में भी, सुनाने में भी। विदेश का एक भाई है, वो क्या करता है, पहले प्रश्न पूछता है, उत्तर नहीं बताता है, मुरली पूरी पढ़ता है, फिर बोलते है बताओ अब उत्तर क्या है। ये कई जगह है, अलग अलग विधियां है, क्योंकि ऐसा करना है कि उनमें इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाए, उनका थोड़ा चिंतन चलने लगे, क्या है सुनना सुनाना और योग, ये तीन चीजों में नवीनता चाहिए, नहीं तो वही अपना पुराना पुराना, सब पुराना पुराना लेके, जैसे वो शास्त्रों में दिखाया है ना, शंकर जी जो थे उनकी शादी हो गई सती से अगेंस्ट द विश ऑफ हिज हर फादर, वो दक्ष पदा प्रजापति की इच्छा नहीं थी मैरिज के लिए, परंतु फिर भी तो शादी हो गई, और फिर जब यज्ञ रचा उधर, वो तो इन्विटेशन दिया ही नहीं शंकर को, फिर भी तो वो सती चली गई, और गई तो देखा अपने हस्बैंड की उधर इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई, तो उसने क्या कर दिया, जल के मर गई। और जब उसको पता चला, शंकर को क्रोधित हो गया, वीरभद्र रूप धारण किया और सारा यज्ञ तहस नहस जला दिया, और उसकी जो पत्नी थी उसका जो बोझ था वो लेके घूमता रहा कि कोई मिल जाए, कोई फिजिशियन, कोई डॉक्टर कि जो उसको ठीक करे, उसकी जला हुआ शरीर 12 साल तक लेकर घूमता ही रहा सृष्टि पर, जहां जहां उसके टुकड़े गिरते गए वहां वहां शक्तिपीठ बने, एक इधर भी गिरा। तो हम भी ऐसे ही अपने कंधों पर पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुरानी विधि, पुराने तरीके लेकर घूम ही घूम रहे हैं, उसको पता ही नहीं, जब तो पूरा शरीर गल गया था तब उसको ध्यान में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। वही हर दिन नया चाहिए, हर दिन नया अनुभव, नहीं तो हमारी स्थिति और वो शंकर जी की स्थिति एक ही है, हम भी अपने इधर मोह इतना कि वही चीजें कंधों पर लेके घूम ही रहे सृष्टि पर, कब से घूम रहे पता नहीं। तो वो पुरानी बातें, उसके लिए बाबा ने चार सूत्र बताए। पहला सूत्र है गहराई में जाओ, पहली बात क्या है, गहराई में जाना है, हर पॉइंट की गहराई में जाओ, हर बात की गहराई में जाओ, आज इंग्लिश क्लास नहीं रखेंगे, हर पॉइंट की गहराई में, तो गहराई में जाना। दूसरा पॉइंट है एकांत, एकांत में दो बातें, एक स्थूल एकांत और एक के अंत में खो जाना। स्थूल एकांत की भी बहुत आवश्यकता है, संगठन का अपना महत्व है, गैदरिंग का अपना महत्व है, संगठित योग का, संगठित ज्ञान चर्चा का और ग्रुप का महत्व है, परंतु एकांत के लिए बाबा कह रहे हैं एकांत में जाओ, और क्या करो, एक के अंत में भी जाओ। एक के अंत में जाना तो बहुत आगे की अवस्था है, पहले स्थूल एकांत जाओ। स्थूल एकांत, हमेशा ही घिरे हुए हैं आसपास लोगों से और बाह्य मुखी है, उनसे ही बात कर रहे, एकांत का समय ही नहीं है, तो एकांत। तीसरा सूत्र है पॉइंट निकालना, उसमें बाबा ने दो उदाहरण दिए, एक शब्द दिया बाबा, इस बाबा शब्द का अलग अलग अनुभव, तीन उदाहरण बताए उसमें भी, जब तुम ज्ञान में आते हो तब बाबा कहते हो तो क्या अनुभव, जब मधुबन में आते हो पहली बार तब क्या अनुभव, और जब मधुबन से जाते हो तब क्या अनुभव, गहरी जिगरी प्राप्ति के आधार पर अनुभव, ये अलग अलग अनुभव। दूसरा उदाहरण बताए शांति का, शांति मैं शांत स्वरूप आत्मा में परमधाम निवासी हूँ, एक अनुभव। दूसरा मैं सतयुग में सुख शांति स्वरूप है, दूसरा अनुभव। तीसरा अशांत वातावरण में वायुमंडल में सेवा कर रहे हो वहां पर मैं शांत स्वरूप आत्मा, ये दूसरा अनुभव। तो ये पॉइंट्स निकालो अनुभव करो, पॉइंट्स निकालो अनुभव करो। अब हम लेंगे बाबा शब्द, बाबा शब्द का अनुभव। उस दिन कहा था ना 50 पॉइंट्स बाबा शब्द के, अलग अलग अनुभव के। एक तो लिया जा सकता है उससे सारे 8 संबंध, उसके अलग अलग अनुभव। 8 तो यही हो गए, बाप टीचर सदगुरु माँ बेटा भाई बड़ा भाई साजन सखा, 8। एक तो ये अलग अलग संबंध है उसका अनुभव। दूसरा उसका स्वरूप, जैसे 7 स्वरूप, ज्ञान सागर ज्ञान सूर्य प्रेम आनंद सुख शांति शक्ति, ये सारे 7 स्वरूप। तीसरा उसका परिचय, वो कैसा है, ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट परमधाम निवासी, और कैसा है निराकार, वो अलग। उसका परिचय पहले, कहाँ रहता है, ये सारी बातें, ये उसका परिचय। फिर दूसरा बाबा शब्द में अनुभव, उसका ऑक्यूपेशन, आज कहाँ है वो काशीनाथ, काशीनाथ है आज कहाँ ना, काशी कलवट, सच्चा सच्चा काशी कलवट क्या है, वो काशीनाथ है। तो उसके सारे नाम, गार्डनर खिवैया है, बागवान है, वो क्या क्या है, बिजनेसमैन है, जो भी है, ये सारे एक एक रिलेशन, जितने ऑक्यूपेशन है दुनिया में वो सब वो है, दुनिया में जितने उद्योग है धंधे है वो सब वो है, सब करता है। वो कहते हैं मैं दलाल भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ सर्जन हूँ, मैं ये हूँ, कौन सा बिलेश्वर हाँ बिलेश्वर धड़ाधड़ भक्तों की आराधना पूरी करता है, लहरी बाबा अलग 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 है। तो वो सारे एक। फिर दूसरा बाबा का अनुभव, माया का जब आक्रमण होता है तब बाबा का अनुभव। अगला है प्राकृतिक आपदा, उस समय बाबा का अनुभव। अगला है शॉक्स, जीवन में धक्के जो लगते हैं, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स, जैसे किसी ने अपमान किया, निंदा की, ग्लानी की, विरोध किया, अपशब्द बोले, विरोध किया, असहयोग दिया, अविश्वास किया, धोखा दिया, ये सब स्थितियों में बाबा का अनुभव, जीवन की अलग। फिर है अमृत वेला, उसका अनुभव। फिर है मुरली के समय बाबा शब्द। एक हम सब बाबा शब्द के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एक ही बाबा पर अलग अलग परिस्थितियों में क्या क्या अनुभव। फिर दिनचर्या में, कर्मयोग में, संबंध में, संपर्क में, नुमा शाम के योग में, रात्रि सोते समय, गलती हो जाए, भोजन के समय, कर्म योग में, ये एक ही बाबा शब्द, और इतने सारे इसको डिवाइड कर सकते हो। तो बाबा ने क्या कहा, एक पॉइंट लो, एक वर्च्यू लो, जैसे प्रेम सुख बताया उसी तरह शांति बताया, वैसे आनंद लो, प्रेम लो, और उसका विस्तार करो। तो पहला गहराई में जाना, दूसरा पॉइंट निकालना, दूसरा एकांत, तीसरा पॉइंट निकालना, चौथा विविधता। क्या विविधता लाओ, वेराइटी पिकनिक, जैसे कि योग की निविधता बाबा ने बताई, कभी परमधाम, कभी सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन तो नहीं कहा पर जा सकते, सूक्ष्म वतन, कभी सेंटर, कभी मधुबन, कभी सतयुग, कभी सुखधाम, ये वाला नहीं, पिकनिक बोला ना तंदूरी, इधर भी होती है, तो कभी सेंटर, अलग अलग जगह फरिश्ता रूप में जाकर ये करना। तो ये 4 सूत्र है, पहला है गहराई में जाना है, नहीं तो वही 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 रहेगा, नवीनता लानी है ना, तो गहराई। दूसरा एकांत में जाओ, तीसरा पॉइंट्स निकालो, चौथा विविधता। अब ये तो योग की विविधता बताई, वैसे ज्ञान में विविधता, वैसी धारणा में विविधता, वैसी सेवा में विविधता, हर चीज में नवीनता क्या करूं मैं, जो दिनचर्या है उसमें क्या नवीनता लानी है, नहीं लाओगे तो सुस्ती अलबेलापन, मैं सब कुछ जानता हूं और क्या जानना बाकी है, सब मुझे पता है, कुछ करने की ठहरती कला हो जाएगी, बाबा ने कहा। तो अगर मुरली को देखा जाए तो इस मुरली, और एक बात यहाँ कहिए कि हम परवाने हैं, बाकियों को भी परवाना बनाकर क्षमा तक ले जाना है। और एक तीन बातें और एक कही है इस मुरली में कि हम कैसी है प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। तो जो प्राप्ति वाले होते हैं जैसे वो राजकुमार होते हैं उनके चेहरे से ही पता चलता है, तो प्रसन्न होते हैं, संपन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो वैसी हम आत्मा है। तो मुरली से होमवर्क है पहला कि आत्माओं को क्या करना है, प्राप्तियों के पंख देने हैं एक, दूसरा परखने की आंख देनी है, तीसरा प्रत्यक्षता का मक्खन देना है। किनको देना है, भारतवासी, आबू निवासी, विदेश और नीचे जो शांतिवन में आत्माएं आई है फरिश्ता रूप में अमृत वेला वहां जाना है और सर्व आत्माओं को इमर्ज करना है जो आई है और उन्हें क्या देना, देखना है कि हमने प्राप्तियों के पंख दे दिए, देखना है उनको आंख दे दी, तीसरी आंख जैसे खुल गई और उन्होंने देख लिया ये जो स्टेज पर प्रोग्राम और भाषण हो रहे हैं उसके आर पार देख लिया आंख से कि ये सब क्या है, सत्य इससे परे है और वो है कि भगवान यहाँ आया है। जिस स्टेज पर ये हो रहा है उसी स्टेज पर वो आने वाला है या आता है, ये उनको समझ में आ जाए। तो परखने की आंख और तीसरा प्रत्यक्षता का मक्खन ये हमें उन्हें देना है। और अपने लिए क्या करना है, चार बातें जो अभी सुनाई। तो इस तरह से ये संडे की मुरली। तो इसमें और एक चीज है, ये जो लोग हैं इनके लिए जीवन वही है, कोई नवीनता नहीं है, सुबह से लेकर रात तक सामने ही, फिर तो आलस अलबेलापन सब आएगा ना, वही मुरली, वही सुनने का तरीका, वही योग। तो ये जो लोग हैं, ये जो कैदी है जो यहाँ फंसे हुए हैं, बेचारे इनके जीवन में नवीनता कैसी आएगी, जब यहाँ से छूटेंगे बाहर आएंगे, छूटेंगे बाहर आएंगे और रहेंगे कुछ समय बाहर, सत्य को अच्छे से समझेंगे सूरज ये है, और फिर ऐसी युक्ति निकालेंगे कि यहाँ आकर चिल्लाएंगे नहीं केवल इस रास्ते पर, क्योंकि ये चिल्लाएंगे कि तो इनको तो लगेगा वही परछाई है, या फिर यहाँ एकदम नजदीक आ जाएंगे तो अंधा हो गया, देखा हम तुमको जाने नहीं देंगे, अब जो हमको यहाँ से छुड़ाएगा हम उसको मार देंगे, ये ऐसे संकल्प करते हैं जब दूसरे को देखते हैं कि वो अंधा हो गया ना, तो ये वहां से जाने से ही अंधा हुआ है। तो हम भी ज्ञान में पहले अज्ञानी थे, फिर ज्ञान में आ गए और तुरंत उनको जाके समझाने लगे अरे तुम अज्ञान में हो, तो वो हम समझेंगे बिल्कुल हमारे पास आना मत, छुड़ाने की कोशिश भी मत करना हमको, हमको सुनना ही नहीं है तुम्हारा तो हम भी अंधे हो जाएंगे। तो पहले तुम तो फंस गए ब्रह्मा कुमारी में, हमको भी फंसाने आए हो, जादू लग जाएगा। हम जब आए ना, हमारे एक रिश्तेदार मिले तो वो कैसे कहते थे, अरे हाथ तो पहले खूब चंगला होता, मतलब ऐसे कह रहे थे ये अभी ऐसे हो गया सब इसको क्या हो गया पता नहीं, ये मतलब ये पहले अच्छा ही था, ये अभी अभी हाँ तुम हो जाओ ना, अच्छा हो जाओ तुम, तो उनके लिए अच्छा मतलब वो अच्छा है। तो ये जो कैदी है, हम भी ये थे, हमें इस कैदीपन का भी अनुभव है, हम यहाँ चलने वाले भी थे उसका भी हमको अनुभव है, हम बाहर गए उसका भी अनुभव है। अब करना ये है, जैसे भगवान की दृष्टि है कैसी विहंगम दृष्टिधारी उसने ईस्ट वेस्ट ओरिएंट ऑक्सीडेंट सब पर, वैसे हमें देखना है कि ना तो इन सबको हमें छुड़ाना भी है पर हमें अंधा नहीं होना है, इन सबको हमें छुड़ाना भी है परंतु हमें थोड़ा सा प्रकाश देखकर थोड़ा सा अनुभव हो गया, थोड़ी सी बाबा की मदद प्रकाश मिल गया और फटाफट सुनाने लगे दूसरों कि बाबा ने हमको ये कर दिया वो कर दिया, हम बीमार थे बाबा ने ठीक कर दी बीमारी, नौकरी छूट गई थी बाबा ने नौकरी दिला दी। ये सब आधार नहीं है आध्यात्मिक जीवन का, छोटी छोटी छोटी, चलो धन्यवाद देना, अपने अंदर उस अनुभव को समाये रखना, पर उसको तुरंत बता देना उसकी शक्ति कम हो जाती है, उस अनुभव को अंदर ही अंदर संभालो और जब उचित समय आएगा कुछ समय के बाद तब सुनाना, नहीं तो थोड़ा सा आग देख ली गया और समझ लिया यही सूर्य और आके इनको समझाने लगे तो डर भी लगता है फिर। तो ये जो चित्र है अरस्तु की गुफा, प्लेटो की गुफा, इसको याद रखना और ये भी अनुभव करना कि मैं अगर ये हूं यह कैदी तो मैं कैसे छूटू, कैसे आलोक पे आऊं। ठीक है, ऑप्शन।